मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग फिर से इतिहास के एक प्रश्न पर बात करेंगे, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। देखिए, अक्सर जब आप जनरल स्टडीज की तैयारी के बारे में किसी से पूछेंगे तो वह यही बताते हैं कि आप न्यूज़ सुनिए, स्पेशली आपको दूरदर्शन न्यूज़ और रेडियो न्यूज़ के लिए वो सलाह देंगे, साथ ही साथ अखबार पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, इस तरह की बातें वो कहते हैं जो सही भी है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? देखिए, बात बहुत स्पष्ट है और वो ये कि क्योंकि कोई भी चैनल अपने आप में पूर्ण नहीं होता। डेफिनेटली आप सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, और सिविल सर्वेंट बनने का मतलब है कि जो सरकार है आप उसका हिस्सा होने जा रहे हैं। तो आप को डेफिनेटली जो हमारी ऑफिशियल चैनल्स हैं, जिसे हम दूरदर्शन कहेंगे, जिसे हम रेडियो कहेंगे, इससे तो जुड़ा रहना है ही, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये अपने आप में पर्याप्त हैं? याद रखिए, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे समाचार होते हैं जिन्हें हमारा ऑफिशियल मीडिया कवर नहीं करता है। उसके पास अपने समय की सीमाएं हैं और डेफिनेटली उसके पास अपनी एक विचारधारा भी है, अपना एक प्रिंसिपल है, अपनी कुछ कसौटियां हैं जिसके आधार पर वो समाचारों का मूल्यांकन करके और उस तरीके से वो प्रस्तुत करती है। दुनिया के सारे ऑफिशियल मीडिया ये करते हैं, कोई भारत की बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि नहीं, आपको दूसरे सोर्सेज पर भी ध्यान देना चाहिए, उसमें न्यूज़पेपर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दूसरे सोर्सेज के अंतर्गत मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप दूरदर्शन के बाद फिर NDTV भी देखिए और आज तक भी देखिए और फलाने भी देखिए, क्योंकि कितना देखेंगे, कभी कभार देख लिया तो बात अलग है, अदरवाइज आपकी भी एक सीमा है। तो ऑफिशियल मीडिया को आप कभी इग्नोर मत कीजिए, लेकिन इसके साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पर भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। यह बात मैं खासकर एक घटना के संदर्भ में कह रहा हूं, एक न्यूज के संदर्भ में कह रहा हूं दोस्तों, और वो ये है कि एक NGO है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जिसकी स्थापना मदर टेरेसा ने की थी, आप जानते हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न भी हम लोगों ने दिया है। मिशनरी ऑफ चैरिटी, एक कानून है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आर को ब्रैकेट में है रेगुलेशन एक्ट, ये 2010 में बना था। देखिए क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है किसके पास आ रहा है, NGO के पास आ रहा है। आपने NGO खोला है तो NGO के लिए आप देश से धन ले सकते हैं, नागरिकों से ले सकते हैं, सरकार भी धन देती है, ये एक तरीका है, लेकिन आप विदेश से भी धन ले सकते हैं। बहुत से हमारे भारतीय NGO हैं जिन्हें विदेश से फंड्स मिलते हैं, तो जो विदेश से फंड मिल रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि जो भी चाहे वो धन ले ले, जो भी चाहे वो दे दे, जितना चाहे ले ले। उसका कारण ये होता है कि जब कोई भी संस्था, चाहे पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, विदेश से जब किसी दूसरे देश को धन देती है, NGO को, तो हो सकता है कि उनके अपने कुछ हितों और उन हितों के लिए वो धन दे रही और उस NGO का गलत इस्तेमाल करे, तो उनको रेगुलेट करने के लिए 2010 में एक्ट आया था और फिर बाद में इसमें थोड़ा सा और ऐड किया गया, संशोधन किया गया, ये एक्ट है। और खासकर इस तरह की एक्टिविटीज को ध्यान दिया जाता है जिससे हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं वो बाधित हो रहे हों। जैसे बहुत से NGO हैं, मान लीजिए कि कहीं खदान की नीलामी कर दी गई या कहीं बांध बन रहा है, अक्सर आपको इस तरह की घटनाएं सुनने को भी मिलेंगी, तो जो फॉरेन के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि भारत डेवलप करे, तो नहीं या इस खदान का विरोध करो, तो इस बांध का विरोध करो, तो पता लगा कि वहां धरना दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, और उसकी पूरी फंडिंग फॉरेन कंट्री से हो रही है ना, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं और खासकर जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता भी चलता है। तो सरकार ने इसके लिए कानून बनाया है और उस कानून के तहत, जिस अभी मैं NGO की बात कर रहा था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, फिर लगातार इन NGOs को अपने आप को पुनर्नवीकरण भी कराना पड़ता है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन इनका हुआ है उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ता है। तो अभी फिलहाल सरकार ने इसको रिन्यू करने से मना कर दिया है, ये कहते हुए कि इस NGO के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली हैं, कुछ FIR भी दर्ज हुए हैं। अब आप देखिए कि क्या होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। बकायदे आप अपना सिलेबस देखिएगा तो दिया हुआ है, उसमें एनजीओ हैं, चैरिटी होते हैं, सिविल लिबर्टीज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ये सब के सब बकायदे आपके सिलेबस में है। तो चूंकि ये उससे जुड़ा हुआ मामला है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बावजूद इसके कि ऑफिशियल मीडिया में डेफिनेटली आपको इस तरह के समाचार सुनने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, दूसरी जो खबर है उसको लेकर के मैं आज आपको दो एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक है दैनिक भास्कर का, उत्तर दक्षिण राज्यों के गवर्नेंस में इतना फर्क क्यों है, और दूसरा है हिंदुस्तान का, पैमाने पर चिकित्सा। अभी स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, हमारे देश का स्वास्थ्य सूचकांक जो राज्यों के स्तर पर है कि किस राज्य में किस तरह का काम हो रहा है, उसमें कौन सबसे अच्छा कर रहा है, और नीति आयोग इसे जारी करता है। एक अच्छी बात है, इस तरह के सूचकांक जारी करने से राज्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इस स्वास्थ्य सूचकांक की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि साउथ के जो स्टेट हैं वे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और शुरू के कुछ चार राज्य तो एकदम साउथ के ही हैं और आपको मालूम भी होने चाहिए। टॉप पर है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है आंध्र प्रदेश। और नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट हैं वो बिल्कुल नीचे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को आप ले सकते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये नीचे में हैं। तो इसको लेकर के भास्कर ने बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट लिखा है। देखिए, एडिटोरियल कमेंट भी अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रख करके पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों में से कौन सा कमेंट बेहतर है। और जब आपको ये पता लग सकता है कि कौन सा कमेंट बेहतर है, तो मैं समझता हूं कि आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो आपने उत्तर लिखा है कौन सा उत्तर बेहतर है, क्योंकि आप में मूल्यांकन की वो क्षमता है। आप इन दोनों को पढ़िएगा और खासकर इन कमेंट्स में आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जिनका इस्तेमाल आप मल्टीपर्पज कर सकते हैं, बहुउद्देशीय तरीके से कर सकते हैं। केरल टॉप पर है, तो क्यों केरल टॉप पर है, फिर आपको पता लगेगा कि वहां शिक्षा की दर सबसे बहुत पहले ही वो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, और वहां का जो गवर्नेंस है वो बहुत बेहतर है, साउथ का गवर्नेंस अच्छा है। और खासकर जो भास्कर का जो एडिटोरियल कमेंट है उसकी आखिरी की जो लाइन है, मुझे लगता है कि उसे आपको नोट कर लेना चाहिए। उस लाइन को मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, ये लंबे समय तक आपके काम आएगा। सन 2018 में यूके और यूएस की दो यूनिवर्सिटीज ने दुनिया के 106 देशों के 100 वर्षों की स्थिति पर एक चौंकाने वाले अध्ययन में पाया कि पूर्ण वैचारिक धार्मिक सहिष्णुता विकास की पूर्व शर्त है। यानी आपको अगर विकास करना है तो आपको धार्मिक सहिष्णुता अपनाकर चलनी होगी, धार्मिक कट्टरता के आधार पर आप विकास नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे जब साउथ में चुनाव होते हैं तो उनकी डिमांड किस तरीके की होती है पब्लिक की, और नॉर्थ में जब चुनाव होते हैं तो वो किस तरह के मुद्दों पर चुनाव होते हैं। जबकि जो नॉर्थ इंडिया आप देखिए कि सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ इंडिया ने दिए हैं, तो सबसे ज्यादा विकास की संभावना अगर उस तरीके से बात करें तो नॉर्थ की होनी चाहिए थी, और इसे विकास के उन स्तरों को स्पर्श कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोनों जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे बहुत अच्छे तथ्य मिलेंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और उसके तहत मैं बी सेट के अगले प्रश्न को ले रहा हूं, और वह है प्रश्न छठवां। प्रश्न है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थी जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, ये प्रश्न कठिन है, सामान्यतया मैं कहूंगा कि ये प्रश्न कठिन है, क्योंकि अब आप देखिए कि एक स्कूल का नाम है बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से बाद में जाना जा रहा है, और उसके सेक्रेटरी है, वो अध्यक्ष भी नहीं है या संस्थापक भी नहीं है, तो इससे थोड़ा सा वो कठिन बन जाता है। और इतिहास की किताबों में सामान्यतः इस तरह की बातें लिखी भी नहीं जाती हैं, पहली बात। फिर अब जो विकल्प दिए गए हैं, देखिए कौन कौन से हैं, एनी बेसेंट महिला है, देखिए मतलब विकल्प में आपको किस तरीके से उन्होंने फंसाने की कोशिश की है, आपके लिए चारा डाला जा रहा है कि आप यहां फंस जाएं, है ना, जैसे मछली पकड़ने के लिए आप चारा लगाते हैं ना, उसी तरह से एनी बेसेंट। दूसरा दे रहे हैं वो देवेंद्र नाथ टैगोर, टैगोर परिवार से हैं, चूंकि टैगोर का परिवार जो है शिक्षा से संबद्ध रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने तो बिरकाल दे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, शांति निकेतन की स्थापना की, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है ईश्वर चंद विद्यासागर, और इसके बाद है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भी महिला हैं, तो आपको लगेगा यार फीमेल स्कूल का संबंध है तो हो सकता है कि ये हो। अगर बेथ्यून फीमेल स्कूल, बेथ्यून नाम है तो एनी बेसेंट हो सकती हैं, क्योंकि एनी बेसेंट विदेशी नाम है, बेथ्यून विदेशी नाम है, तो एनी बेसेंट हो सकती है। तो आप देखिए कि इसमें काफी कुछ आपको उलझाने की कोशिश की गई है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो प्रश्न है अपेक्षाकृत कठिन है। कठिन दो तरीके से है। पहली बात तो यह है कि यह बहुत वेल नोन फैक्ट नहीं है, किताबों में आपको इसके बारे में बहुत जानने और पढ़ने को नहीं मिलेगा। दूसरा यह कि जो विकल्प भी दिए गए हैं वो स्ट्रेट है, ए बी सी डी दे दिया है, यानी कि अगर आप एग्जैक्ट जानते हैं तभी आप निशान लगा लें, यहां गुंजाइश नहीं है। अगर कूट का प्रयोग करते हैं तो वहां गुंजाइश हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने चार में से छांट लिया कि सी नहीं हो सकता या तीसरा नंबर नहीं हो सकता, तो आप देख लीजिए कूट में कि तीसरे नंबर को किस किस में डाला हुआ है, तो आप उसे निकाल सकते हैं। यहां वो भी संभावना नहीं दिखाई देती, आपको गुंजाइश नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप? डेफिनेटली दोस्तों यह चैलेंज है, लेकिन जब मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की तो देखिए मैंने क्या किया। मैंने किया ये कि ईश्वर चंद विद्यासागर खासकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इनका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। जैसे कि आपके राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के खिलाफ पायोनियर माना जाता है, तो ईश्वर चंद विद्यासागर खासकर नारी शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरह का एक बड़ा नाम है। सामान्यतः जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम आता है, जो रिनेसा पीरियड रहा है उस दौर में उनका नाम आता है। तो मैं इस आधार पर ईश्वर चंद विद्यासागर में पहुंच गया था, और बिल्कुल कन्फर्म मुझे लग रहा था कि ने ईश्वर चंद विद्यासागर ही हो सकते हैं। ये मैंने अपनी बात बताई, अब आप सब इससे अपनी अपनी बात को जोड़कर अपना अपना मूल्यांकन कर लीजिए। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।